तो चलिए आज हमारे पास गायत्री तीर्थ शांति कुंज पर आधारित कुछ काफी दिलचस्प सामग्री है
जी।
इसमें शांति कुंज के उद्देश्य, वहां का माहौल और जीवन शैली पर बात की गई है। एक चीज जो मुझे शुरू में ही मतलब ध्यान खींचती है वो ये कि अनुयायी खुद को पूज्य गुरु सत्ता का सिर्फ साधक नहीं बल्कि अंग अवयव मानते हैं।
हाँ, जैसे राम के रीच वानर थे
या
कृष्ण के ग्वालवाल।
बिल्कुल
बिल्कुल,
एक गहरा जुड़ाव।
और सामग्री में गुरु सत्ता का एक उद्धरण भी है जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि लोग उन्हें संत या सिद्ध समझते होंगे, पर उनके अंदर तो बदलाव लाने की एक तीव्र बेचैनी, एक आग जल रही है।
जी हाँ, ये उनके मिशन को दिखाता है।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि शांति कुंज के इसी मूल दर्शन को समझें, वहां के माहौल का क्या असर है और ये जो दिनचर्या बताई गई है इसके पीछे क्या सोच है।
हाँ बिल्कुल, और इस सामग्री के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा लक्ष्य जो सामने आता है वो है मनुष्य में दैवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। काफी ऊंचा आदर्श है ये तो।
बहुत ऊंचा, और इसे पाने के लिए फिर व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों स्तर पर निर्माण की बात है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और एक सभ्य समाज, इस पे जोर दिया गया है। और साथ ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु,
यानी सबको अपने जैसा समझना।
हाँ, सभी प्राणियों में खुद को देखना, वो सहानुभूति, और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी धरती एक परिवार।
जी, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब मानना। फिर अनुयायियों को प्रेरित किया जाता है कि वो गुरु सत्ता के जीवन से सीखें, उनके साहित्य से सीखें।
अच्छा,
कहा गया है कि लक्ष्य पर नजर रखना और उनके विचारों के प्रति जागरूक रहना, बस यही सच्ची शिष्यता है। और मंत्र बहुत सरल है, प्यार प्यार प्यार
प्यार।
हाँ, बस प्यार। और उपासना क्या है? आत्मीयता, ममता, स्नेह, श्रद्धा, इन भावनाओं को बढ़ाना। और वो नारा भी बहुत चलता है वहाँ, हम बदलेंगे युग बदलेगा,
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हाँ, ये सुना है।
जी, ये उनकी कार्य प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। बदलाव खुद से शुरू होता है।
दिलचस्प है कि कैसे इतने ऊंचे आदर्शों को रोजमर्रा की भावनाओं और सरल नारों से जोड़ा है। अच्छा, यहाँ शांति कुंज के माहौल का, वहाँ के वातावरण का भी खास जिक्र है।
हाँ बिल्कुल,
बताया गया है कि ये जगह हरिद्वार में है, गंगा किनारे, हिमालय की छांव में, और इसे सप्त ऋषियों की और खासकर ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि मानते हैं।
जी बिल्कुल, ये पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है।
और ये भी लिखा है कि वहाँ एक अखंड दीप, मतलब हमेशा जलता रहता है, लगातार जप और यज्ञ होते हैं।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री कहती है कि करोड़ों, शायद अरबों बार गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ की आहुतियां वहां हो चुकी हैं।
करोड़ों अरबों बार?
जी हाँ, इससे माना जाता है कि वो जगह एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा, एक प्राण से भर गई है। सामग्री तो यहाँ तक दावा करती है कि पृथ्वी पर ऐसी दिव्य साधना स्थली शायद और कहीं है ही नहीं।
ओह,
और देखिए, इस खास माहौल का असर सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, ये वहाँ की जो अनुशासित दिनचर्या है उसमें साफ झलकता है।
हाँ, उस दिनचर्या का भी वर्णन है, क्या कुछ शामिल है उसमें?
वो काफी गहन रूटीन है, सुबह जल्दी उठना, आत्मबोध और कृतज्ञता के भाव के साथ, फिर प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, फिर स्वच्छता, तन मन और घर की भी।
घर की भी? अच्छा
जी। फिर आरती, प्राणायाम जिसे कहते हैं, दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करना, फिर ध्यान खुद को पहचानने के लिए और पंचकोश जागरण के लिए।
पंचकोश जागरण यानी वो अस्तित्व के पांच स्तर?
हाँ बिल्कुल, अपने अस्तित्व की पांच परतों को सक्रिय करना। फिर यज्ञ है सामूहिक सद्भाव के लिए, जप है मंत्र के गहरे अर्थ, उसके तत्व दर्शन को समझने के लिए, फिर स्वाध्याय
यानी अच्छी किताबें पढ़ना, महापुरुषों का संग।
हाँ, और आत्मनिरीक्षण भी। फिर सत्संग है, श्रमदान है, अहंकार को छोड़कर सेवा करना, नाद योग है, अंदर की ध्वनि पर ध्यान लगाना।
नाद योग, जैसे ओंकार ध्वनि?
जी बिल्कुल, अंतर्मुखी होने के लिए। और दिन का अंत होता है रात्रि प्रार्थना से, जिसमें दिनभर का विश्लेषण और क्षमा याचना शामिल है। तो आप देखें, ये पूरी दिनचर्या व्यक्ति को पूरी तरह से अंदर और बाहर से बदलने के लिए डिजाइन की हुई लगती है।
वाकई ये तो बहुत ही विस्तृत और अनुशासित जीवन शैली है।
अच्छा, इसमें जीवन जीने के कुछ सूत्र या फॉर्मूले भी दिए गए हैं ना?
हाँ दिए हैं, जैसे चार स्तंभ बताए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा।
और एक और सेट भी है शायद, समझदारी।
हाँ, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी।
फिर तीन आधार भी हैं, उपासना, साधना आराधना
या फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग।
बिल्कुल, और तीन चीजें हैं जिन्हें त्याज्य बताया गया है, लोभ, मोह, अहंकार। तो एक तरह से जीवन को सही दिशा देने के लिए पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क दिया गया है। और सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर भी जोर है। सिर्फ जानना काफी नहीं है,
जानना, मानना और फिर
अभ्यास करना। हाँ, जानना, फिर उसे विल से मानना और फिर लगातार अभ्यास करके उसे अपने संस्कार का हिस्सा बना लेना। इसके लिए अपनी कोशिश तो चाहिए ही, लेकिन कहते हैं कि शांति कुंज जैसा सही माहौल।
हाँ, माहौल की बात बार बार आ रही है
जी, और बाहरी मदद जैसे प्रेरणा, मार्गदर्शन, स्नेह, ये सब भी बहुत जरूरी माने गए हैं।
अच्छा,
तो कुल मिलाकर देखें तो ये सामग्री यही बताती है कि शांति कुंज एक विशेष आध्यात्मिक माहौल, एक अनुशासित दिनचर्या और गुरु सत्ता के दिए सिद्धांतों के जरिए व्यक्ति और समाज दोनों को बेहतर बनाने का एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास है। और जीवन जीने की जो विधा है उसे सिर्फ जानने या मानने तक नहीं, बल्कि उसे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में उतारकर सहज बना लेने पर ही सबसे ज्यादा जोर है।
और अंत में एक बात और कही गई है कि इंसान को ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए जो लोक मंगलकारी हो, दूसरों का भला करे
जी, जिससे ईश्वर की कृपा मिले, आत्मा को शांति मिले
और समाज में सम्मान भी मिले।
बिल्कुल।
हाँ, तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इस सामग्री में जीवन को दिशा देने के लिए कई सूत्र दिए गए हैं, कई फ्रेमवर्क्स, जैसे वो चार स्तंभ या तीन आधार। क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर्ड नजरिया है, ये व्यक्तिगत विकास के लिए इस खास आध्यात्मिक संदर्भ के बाहर भी उतना ही प्रासंगिक हो सकता है?
ये सोचने वाली बात है।
हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिद्धांत यूनिवर्सल है?
इस पर विचार किया जा सकता है।